मंगलवार तारीख 22 अगस्त दिन गुरुवार। मैं हूँ मानसी दास। पी चिदम्बरम को जमानत नहीं, 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में। फैसले से नाराज कांग्रेस।
जिस तरह से दीवार चढ़ के उनके घर में घुसा गया, ये क्या आपको लगा कि ये कानून काम कर रहा था?
भाजपा ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम।
एक एक घोटाले की अब परत खुल रही है क्योंकि अब सच्चाई से जांच हो रही है। इस पर कांग्रेस वालों के चिल्लाने का क्या कारण है?
जम्मू कश्मीर में कई लोग हिरासत में, परिवारों का दावा प्रशासन नहीं दे रही है उनके अपनों की खबर।
न कुछ बोलते हैं, कहाँ है न कुछ। अब हम सेंट्रल जेल श्रीनगर में गए, हमने वहाँ लिस्ट लिखा, देखा उधर दीवार पे लगा के उसको लिखा है सेंट्रल जेल लखनऊ।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिव्या आर्य से। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आज सीबीआई की अदालत ने 26 अगस्त तक हिरासत में भेज दिया। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पी चिदम्बरम के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जबकि चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत मांगी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पी चिदम्बरम को बड़े नाटकीय तरीके से बुधवार रात कांग्रेस मुख्यालय से गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित मुख्यालय ले गई थी। चिदम्बरम ने उससे कुछ देर पहले एक प्रेसवार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि वो भागे नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए कानून की शरण में गए हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में बीबीसी की एक टीम 2 कश्मीरी औरतों से मिली है जिनका दावा है कि उनके बेटे और पति को राज्य से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों में कई मीडिया रिपोर्टों ने यह दावा किया है कि केंद्र सरकार के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। रिपोर्टों के मुताबिक ये विवादास्पद पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हुई हैं, जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 2 साल तक बिना चार्जशीट या सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है। बीबीसी हजारों की इस संख्या की पुष्टि नहीं कर सका है और पुलिस ने कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए हैं। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश नाकाम हो गई है। बांग्लादेश के राहत शिविरों के सामने लगाए गए 10 ट्रकों और 5 बसों में जाने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया। म्यांमार और बांग्लादेश ने 3,000 से ज्यादा लोगों को वापस लौटने के लिए चिन्हित किया, लेकिन लोग अपनी सुरक्षा के लिए अब भी चिंतित हैं। 2 साल पहले रोहिंग्या सेना से बचकर भागे थे। संयुक्त राष्ट्र ने बर्मी सेना पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। दक्षिण कोरिया ने जापान के साथ अपने 3 साल पुराने सैन्य खुफिया सूचना साझा करने के करार को खत्म करने का ऐलान किया है। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच एक दक्षिण कोरियाई सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इसकी वजह यह है कि जापान ने उसे व्यापार में तरजीह देने वाले करार को खत्म करने का फैसला किया है। किम यू ग्युन ने कहा, जापान ने द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों के लिए माहौल बहुत बदल दिया है। बदले हुए हालात में हमें नहीं लगता कि ये हमारे राष्ट्रहित में होगा कि हम वो समझौता कायम रखें जिसका मकसद सैन्य खुफिया जानकारी साझा करना था। ये थे किम यू ग्युन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया ने पापुआ न्यू गिनी की इंटरनेट सुविधा बंद कर दी है। पापुआ न्यू गिनी में कई दिनों से नस्लवाद की शिकायतों की वजह से अशांति है। सरकार ने कहा उन्हें भड़काऊ संदेशों की रोकथाम के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। हिंसा से निपटने के लिए सैकड़ों की तादाद में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद गुरुवार को और प्रदर्शन हुए। पापुआ में कई लोग इंडोनेशिया से आज़ादी चाहते हैं। ताज़ा तनाव तब पैदा हुआ जब पुलिस ने दर्जनों छात्रों को गिरफ्तार कर उन्हें बंदर और कुत्ता शब्दों से संबोधित किया। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के एक शोधकर्ता आंद्रे हार्सोनो ने बीबीसी को बताया, सरकार कई शहरों में दंगों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पश्चिमी पापुआ में एक जेल जला दी गई, संसद की एक इमारत भी जला दी गई, कैदी भाग गए, पर साथ ही 2 लोगों के बुरी तरह घायल होने की रिपोर्ट आई। लेकिन इस सब में हमने उन अफसरों से पूछताछ के बारे में कुछ नहीं सुना जिन्होंने छात्रों को बंदर कहा था। ये थे आंद्रे होर्सोनो के शब्द। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच के माँ बाप अपने दोनों बेटों के लिए अदालत से कोई रियायत नहीं ले पाए। उनके बेटों पर अपनी बहन के कत्ल का आरोप है। माँ बाप ने अदालत में कहा था कि उन्होंने अपने बेटों को इसके लिए माफ कर दिया है। कंदील बलोच सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तब चर्चा में आई थीं जब वो 26 साल की थीं और उसी उम्र में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद हुए कड़े विरोध के चलते पाकिस्तान में कानून बदला गया और अब पीड़ित के परिवार ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर की गई हत्या के आरोपियों को माफी नहीं दे सकते। हांगकांग के बड़े बैंकों ने अखबारों में विज्ञापन छापकर लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों को शांतिपूर्वक तरीके से खत्म करने की अपील की है। HSBC समेत इन बैंकों ने किसी पर दोष नहीं मढ़ा है, पर सामाजिक व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने पर चिंता जाहिर की है। पिछले हफ्ते इलाके के सबसे धनी आदमी माने जाने वाले ली काशिंग ने भी ऐसे विज्ञापन छपवाए थे। ऐसे संकेत हैं कि जून में शुरू हुए प्रदर्शनों का हांगकांग के व्यापार पर बुरा असर पड़ा है, पर राजनीतिक स्तर पर इस संकट को सुलझाने के लिए कोई खास बढ़त अब तक नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि जब तक ऐसी बढ़त नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेंगे। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से जिस पर आज राजधानी दिल्ली में राजनीति गर्म रही। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को CBI अदालत ने 26 अगस्त तक CBI हिरासत में भेज दिया है। आज दिल्ली में CBI मुख्यालय में उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई और इसके बाद उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया था। भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें कल शाम गिरफ्तार किया गया था। CBI का कहना था कि चिदंबरम से वो पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए उनको 5 दिन के रिमांड पर लेना चाहती है। सुनिए BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
चिदम्बरम की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी CBI रिमांड की मांग के विरोध में अपने तर्क रख रहे थे। वहीं CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनकी टीम का कहना था कि रिमांड पर लेना इसलिए जरूरी है ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। विशेष CBI जज की अदालत ने पी चिदम्बरम को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया, जिसका तुषार मेहता विरोध करते रहे। अपना पक्ष रखते हुए चिदम्बरम ने अदालत को कहा कि विदेश में उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जबकि उनके बेटे के विदेशी खाते के बारे में CBI को जानकारी दे दी गई थी। अदालती कार्यवाही के बारे में बोलते हुए CBI की तरफ से मौजूद वकीलों में से एक ने बाहर जमा पत्रकारों को बताया,
जो पुलिस रिमांड मांग रही थी इसको जस्टिफाई करार दिया है, जस्टिफाइड माना है और 26 तक के लिए इनको जो है रिमांड पे भेज दिया है।
इससे पहले वर्ष 2018 के जून माह में भी CBI ने चिदम्बरम से पूछताछ की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चिदम्बरम की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं,
मौजूदा भाजपा सरकार ED और CBI को अब व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में उन्होंने तब्दील कर दिया है।
जहां कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी का विरोध किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना था कि सरकार न तो CBI के कामकाज में दखल देती है और न ही न्यायपालिका के काम में।
CBI अपना फैसला करती है और इसलिए CBI हो ED हो, हम उसके दखल अंदाजी नहीं करते और इसलिए कानून अपना काम करेगा। लेकिन कांग्रेस वाले देश के सामने फिर से बेनकाब हुए कि वो भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए सभी एकजुट है, बाकी उनमें बहुत दरार है और यही कांग्रेस का रूप है जो कांग्रेस को ले डूबी और वो अभी भी जनता से कट रहे हैं इसीलिए कि वो भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं।
CBI की विशेष अदालत ने ये भी निर्देश दिए हैं कि रिमांड के दौरान पी चिदम्बरम का मेडिकल चेकअप हर 48 घंटों में किया जाना चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के सवाल पर बटी हुई कांग्रेस पी चिदम्बरम के मामले में एकजुट दिखाई जरूर पड़ी। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये तो हुई आज की बात, लेकिन कल जिस प्रकार जल्दबाजी दिखाते हुए CBI ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया, इसे लेकर काफी चर्चा हुई। मीडिया में ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें CBI के अधिकारी चिदम्बरम के घर की दीवार फांद कर उनके घर जाते दिखे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं BBC संवाददाता विनीत खरे। विनीत, आपने इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकीलों से बात की है, क्या कहना है उनका?
देखिए, जल्दबाजी आप ये शब्द जिससे पूछिए वो अलग उसका इंटरप्रिटेशन देता है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट प्ली रद्द कर दी थी, उसको उनको रिलीफ देने से मना कर दिया था, और उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी थी। उसको लेकर मैंने दो वरिष्ठ वकील हैं सूरज सिंह और कुमार मिहिर, मैंने उनसे बात की और मैंने सबसे पहले पूछा कि जो हाईकोर्ट ने बेल को निरस्त करते हुए कहा कि पहली नज़र में याचिकाकर्ता किंग पिन है, मुख्य षड्यंत्रकारी है, हाईकोर्ट और क्या कर सकता था, इस पर सूरज सिंह का कहना था
कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट की थी उनकी एंटीसिपेटरी बेल, कम से कम इतना टाइम तो दिया जाना चाहिए था कि आदमी अपील कर सके। अगर अपील का टाइम नहीं दिया गया है तो ये अपने आप में सही पूछा जाए तो न्याय नहीं है। तो हमारे यहाँ कई खामियां हैं कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी खामी ये है कि कोई भी आदमी अपने आप को इनोसेंट सिद्ध करे इसी में उसको 6 महीने लग जाते हैं, तब तक तो उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए, और हमारे सिस्टम में अगर किसी को एक बार एक्यूज कह दिया तो उसको दोषी मान लिया जाता है, ये नहीं कि अभी कहीं उसका अपराध सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से।
ये थे सूरज सिंह, लेकिन कुमार मेहर हैं वरिष्ठ वकील, वो भी हैं, उनकी सोच थोड़ी अलग थी।
नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल के मैटर में कोर्ट मेरिट में घुसती नहीं है, बट क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो इस केस में मैंने जैसे आपको बताया एक आर्ग्यूमेंट यही लिया गया था कि भाई इनका इनका नाम ही नहीं है एफआईआर में, इसलिए इनको इन्वेस्टिगेशन एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए, इसलिए कोर्ट मजबूर हो गया कि इनका इनके बारे में और इनके रोल के बारे में कुछ बोला जाए, क्योंकि उसी ग्राउंड पे अगर आप वो कोर्ट नहीं कहता तो इनका एंटीसिपेटरी बेल डिनाई नहीं किया जा सकता था, राइट? सो इसलिए इनके रोल के बारे में कहना कोर्ट की मजबूरी हो गई थी।
ये थे कुमार मेहर, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम की याचिका सुनने से इनकार कर दिया था, इस पर भी दोनों वकील क्या सोचते हैं, पहले सूरज सिंह से सुनते हैं।
सुप्रीम कोर्ट इंटरिम प्रोटेक्शन दे सकती थी, कोई आफत नहीं मच रही थी। सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑनरेबल जस्टिस रमन्ना के सामने था तो इसमें अलग राय हो सकती है, जो इन्होंने किया लीगली वो गलत नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरिम प्रोटेक्शन दे देते तो वो भी गलत नहीं है। कानून में एक चीज के कई राइट आंसर है, एक राइट आंसर नहीं है, और उसमें से कोई भी अगर उन्होंने मना कर दिया तो कोई इलीगल काम नहीं किया, और अगर वो जो है उनको प्रोटेक्शन दे देते तो वो भी बेहतर होता।
ये थे सूरज सिंह, और कुमार मेहर का इस पर क्या कहना था, आइए सुनते हैं।
इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, देखिए इस मैटर में जनवरी से जजमेंट रिजर्व था हाईकोर्ट का, और 7 महीनों के बाद जब हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दे दिया कि भाई इनका अरेस्ट जरूरी है और एंटीसिपेट ये इनके चारों तरफ ही ये सारी साजिश है, ही वाज द मेन पर्सन इन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी, और सुप्रीम कोर्ट जहां तक उनके अधिकार में अब जजेस को लगा कि भाई इसमें वेट कर सकते हैं तो उस पर कोई टिप्पणी करना अभी मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ, वो तो क्योंकि मैटर सब जुडिस है।
तो ये थे वरिष्ठ वकील सूरज सिंह और कुमार मेहर, राय बटी हुई है।
जानकारी के लिए धन्यवाद विनीत खरे। अब रुख महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का, जहां कोहिनूर मील मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से पूछताछ की गई। ईडी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था आईएलएफसी की ओर से कोहिनूर सीटीएनएल को दिए गए कर्ज के अनियमितताओं की जांच कर रही है। क्या हुआ आज दिन भर, जानते हैं बीबीसी संवाददाता मयूरेश कोहिनूर से, जो इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। मैंने उनसे थोड़ी देर पहले राजेश जोशी ने उनसे थोड़ी देर पहले बात की।
आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास राज ठाकरे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस में यहाँ पे पहुंचे। साउथ मुंबई जो है वहाँ पे उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे उन्हें बुलाया गया था, तो वो वहाँ पे पहुंचे। वो रहते दादर में है यानी सेंट्रल मुंबई में, तो वहां से निकलने के बाद पूरा उनका कॉन्वॉय साथ में था, उनकी फैमिली उनके साथ में थी और वो यहाँ पे आ गए। हालांकि उनकी फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया, सिर्फ राज ठाकरे वो ही अकेले अंदर चले गए और फिर उनकी पूछताछ पूरे दिन होती रही। उनकी फैमिली जो है, उनकी वाइफ है शर्मिला, उनकी बेटी, उनका उनके बेटे अमित, वो सारे बगल में ही ईडी के ऑफिस के बगल में ही होटल ग्रैंड है, वहां पे दिन भर उनकी राह देखते रहे।
राज ठाकरे को बुलाया गया है, जिनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को काफी उग्र राजनीतिक पार्टी माना जाता है, अब वो उनके कैडर में किस तरह की हलचल है, क्या कोई सुरक्षा को लेकर के चिंता है?
जी बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर चिंता थी, क्योंकि इससे पहले जैसा जिसका जिक्र आपने भी किया कि जब भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आंदोलन किया है, वो उसे मनसे स्टाइल आंदोलन कहते हैं, महाराष्ट्र में हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो वह पैदा हुई है, और खास करके अब राज ठाकरे ने खुद बीजेपी और सेना जिनकी सरकार है वो महाराष्ट्र में हो या फिर केंद्र में हो, उनके खिलाफ जो स्टैंड लिया है वो आंदोलन करते रहते हैं। हो गई लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने ये स्टैंड लिखा था, वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। इसी वजह से उन्होंने पूरी जगह पे अगर हम देखें तो मुंबई में पुलिस ने एहतियात बरते थे सिक्योरिटी के लिए, वो दादर से निकले और साउथ मुंबई में ईडी के ऑफिस में आए, रास्ते के दोनों तरफा पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे खड़ी थी।
हमारे श्रोताओं को मयूरेश ये बताइए कि ये आखिर केस क्या है?
ये बहुत पुराना एक केस जिसे नहीं कह सकते लेकिन पुराना मामला है, इन्वेस्टमेंट है, जो जिसमें राज ठाकरे खुद शामिल थे, वो उस वक्त शिवसेना के नेता हुआ करते थे, उन्होंने अब तक शिवसेना नहीं छोड़ी थी, और दादर में जहाँ पे शिवसेना का मुख्यालय है शिवसेना भवन, उसके एग्जैक्ट सामने कोहिनूर नाम की एक मिल हुआ करती थी, उसके कुछ हिस्से का लीलाव हुआ था और राज ठाकरे उसके बाद उन्मेष जोशी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, शिवसेना नेता मनोहर जोशी उनके बेटे हैं, वो राज ठाकरे और राजन शिरोडकर नाम के राज के एक सहकारी थे, उन्होंने तीनों ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की थी और ये लीलाव में है ऑक्शन में ये जगह ली थी। बाद में उसमें कोहिनूर स्क्वायर नाम की एक बड़ी 50 मंजिला इमारत भी खड़ी हुई, वो आज भी वहां पे खड़ी है,
उसी सिलसिले में बुलाया गया। मयूरेश इसका कोई राजनीतिक अर्थ भी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैसे तो उद्धव ठाकरे राइवल हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, लेकिन शिवसेना के उनके जो अपने कजन हैं वो क्या इसमें समर्थन कर रहे हैं?
उद्धव ठाकरे के तरफ से एक बयान आया दो दिन पहले, जब उन्हें इसके बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस तफ्तीश से राज ठाकरे को कोई परेशानी होगी या फिर इससे कुछ बाहर आ सकता है। उनके जो वक्तव्य है उसको ये देखा गया कि या तो वो सपोर्ट कर भी रहे हैं या फिर उससे एक अपनी दूरी भी बनाए रखे हैं, क्योंकि वो भाजपा के साथ सरकार में है और राज हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते आए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय में आज राज ठाकरे से हुई पूछताछ, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर। अब वक्त है जम्मू कश्मीर से हमारी खास कवरेज का। इसी महीने की 5 तारीख को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ हिस्सों को खत्म कर दिया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए। बीते कुछ दिनों में प्रशासन के इसमें ढील देने की बात तो आई है लेकिन अब भी वहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ऐसे में वहां से खबरें करने में भी काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के बारे में। यहाँ कुछ इलाकों में मस्जिदों के बाहर दीवारों पर ऐसे पोस्टर देखे गए हैं जिनमें लोगों से सड़कों पर बाहर आने की अपील की गई है। श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर से संपर्क किया बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने और उनसे पूछा कि इस बारे में उनके पास और क्या जानकारी है।
हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, अलबत्ता कुछ पोस्टर्स जो है सोरा इलाके में देखे गए हैं और इधर बरजुला साइड में, जो ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप यानी कि जो हुरियत कॉन्फ्रेंस है उनका एक दड्डा बना था, सईद अलीशा गिलानी का, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का और यासीन मलिक का, क्योंकि यासीन मलिक जेल में है और वो दोनों हाउस अरेस्ट हैं, तो उनके नाम से कुछ पोस्टर चिपकाए गए हैं जिनमें लिखा गया है, आवाम से अपील की गई है कि कल श्रीनगर में जो यूएन का ऑफिस है वहां तक मार्च किया जाएगा, और उसको लेकर के भी प्रशासन जाहिर सी बात है कि उन तक ये खबर जरूर पहुंची होगी और वो बहुत ही सक्रिय हुए होंगे और वो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हर कदम उठा सकते हैं और सिक्योरिटी का काफी ज्यादा इंतजाम बढ़ाया जा सकता है।
जी, और आज सरकार ने जो वो रोजाना एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो भी रद्द कर दी, इसलिए जाहिर है और कोई जानकारी नहीं है कि वो इस पर क्या कदम उठाएंगे, लेकिन लोगों के बीच इस वक्त जो पाबंदियां थी जिनमें ढील दी गई हैं उसके बाद क्या हालत है ग्राउंड पर?
देखिए, आज हम सुबह मेरे ख्याल से 12 बजे के आसपास हम डाउनटाउन के इलाके में गए थे, हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ तस्वीर है जो श्रीनगर के दूसरे इलाके हैं। आप लाल चौक तो बिल्कुल बंद है, हर इलाका बंद है, लेकिन गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो डाउनटाउन से वहाँ बहुत ही इक्का दुक्का गाड़ियाँ हमने देखी, मार्केट बंद थे, लोग ज़्यादा घरों से भी बाहर नहीं थे, तो हमने एक दो लोगों से हम वहाँ पे बात कर पाए और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते हैं, सामान नहीं खरीद पाते हैं, कोई बीमार होगा तो, मतलब बहुत ही उन्होंने जो बयान किया उससे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि इन पे काफ़ी जो है बंदिशें अभी भी हैं, जबकि श्रीनगर के दूसरे इलाकों में हमने आज देखा कि सुबह 11 बजे में खुद पूरे शहर का हम दौरा कर रहे थे और गाड़ियों की एक अच्छी खासी तादाद सड़कों पर नज़र आई हमें, तो लेकिन 1 बजे डलते डलते वो तादाद कम हो गई, लेकिन दुकानें लाल चौक में बंद थी, डल गेट में बंद थी।
कुछ आप मंजरकशी कर सकते हैं कि किस तरह वहाँ एटीएम्स पर पैसे मिल रहे हैं कि नहीं, पेट्रोल पंप खुले हैं कि नहीं, क्या लोग कोई चीज़ों के लिए कहीं पे कतार लगाते दिखते हैं सड़कों पर?
जिन जिन इलाकों में पाबंदियाँ हटी हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ ज़रूर लोगों को एक राहत मिली है। श्रीनगर में भी कई जगहों पर जो बैरिकेड थे वो हटा दिए गए हैं और लोग मूवमेंट कर रहे हैं। अब जहाँ तक एटीएम्स की बात है, और सरकार ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया है कि पिछले 12 दिनों में 800 करोड़ जो है विड्रॉ किया गया है एटीएम से। और मेरी जो अपनी जो पर्सनल तजुर्बा है कि मैं तकरीबन इन दिनों 4-5 एटीएम्स पे गया पैसा निकालने के लिए और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है पैसा निकालने में।
जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। इधर बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा ने कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां का दौरा किया। उन्होंने वहां कई परिवारों से बात की जिनका दावा है कि 370 हटाए जाने के बाद से उनके परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस संबंध में किसी तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा से और इस बारे में उनसे तफसील से पूछा।
5 अगस्त को 370 स्क्रैप होने के बाद हम कल पहली बार शोपियां गए। हम ये देखने गए थे शोपियां में क्या हालात है, क्योंकि शोपियां ऐसी जगह है जो यहाँ से 1-2 घंटे की दूरी पे है और कम्युनिकेशन कोई नहीं है। तो कल जब हम शोपियां एंटर करते हैं, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, ना ही कोई पुलिसमैन था, ना ही कोई आर्मी वाला CRPF, कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल था ही नहीं कहीं शोपियां पे। और उसके साथ और भी एक अजीब बात थी, कोई सिविलियन भी सड़क पे नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने लोगों से बात करनी शुरू की, हम लोगों के घर गए, हम मोहल्लों में गए कि हम किसी से मिले और ये जाने यहाँ हुआ क्या इतने दिनों। तो लोग काफ़ी डरे हुए थे। जिन लोगों से हमने बात की उन लोगों ने हमसे कहा कि बहुत सारे अरेस्ट हो चुके हैं, हर रात को सिक्योरिटी फोर्सेस लोगों के घरों में जाती है, जितने भी लोग सस्पेशन वाले होते हैं कि जो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों को डिटेन किया जाता है। तो हमने उनसे नंबर जानने की कोशिश की कि कितने ऐसे होंगे। तो उनका ये कहना था कि शायद हर मोहल्ले में आसपास 8-10 लोगों को डिटेन किया होगा।
आपकी किसी परिवार से बात हुई?
सबसे पहले हम मिले समीना से, समीना जिनके पति को आर्मी ने डिटेन किया था रात को।
सरकार साढ़े 3 बजे दरवाज त्रो दरवाज बहुत यकदम तो त्रोम दरवाज यल मे त्रो लाइट दाइट कर सा बंद सो बिचार कोड़ रूदिस अंद अंद गन थस इत खड़ा मे गई जंग जिहत मे पता कहें बस तुलहम तो नूहम दुख वन त्रावल पत् रात आंगन नचान यूत कल मंगा तम लिखिस दमस
समीना का कहना है कि रात को आर्मी आई, उन्होंने मेरे पति को लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन नेक्स्ट डे हम उनसे सिर्फ एक बार मिले, उसके बाद हम DC ऑफिस गए, पुलिस स्टेशन गए, हमें अपने पति का चेहरा नहीं दिखाया गया। फिर उसके बाद 12 दिन बाद हमें किसी ने बोला आप श्रीनगर के सेंट्रल जेल जाइए, शायद उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया। तो जब वो श्रीनगर के सेंट्रल जेल आ गए, सेंट्रल जेल के एक दीवार पे एक लिस्ट लगी थी उन कैदियों की जिन्हें UP के डिफरेंट सेंट्रल जेल्स में रिलोकेट किया गया है, शिफ्ट किया गया है। तो समीना का ये कहना है कि हम जब वहाँ गए सेंट्रल जेल, वहाँ पर ये लिखा था कि उनके पति को लखनऊ सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है। तो फिर उसके बाद हम दूसरे परिवार में जाके मिले जो जहाँ पे हमें परवीना से बात हुई।
बोलते हैं ये जवान लड़के हैं, गुंडागर्दी करते हैं, यही लगाते हैं, फिर इल्ज़ाम लगाते हैं इन्हीं लड़कों पर, ना कुछ बोलते हैं कहाँ है ना कुछ। अब हम सेंट्रल जेल श्रीनगर में गए, हमने वहाँ लिस्ट लिखा, देखा उधर दीवार पर लगा कि उसको लिखा है सेंट्रल जेल लखनऊ, मगर खुद अपनी जबान से नहीं बोला उन्होंने वो लखनऊ में है।
परवीना ने हमसे कहा कि उनके बेटे, जो उनके छोटे वाले बेटे हैं जिनकी उम्र 26 साल की है, उनको उसी रात के 3:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस उनके घर में आते हैं, उनके बेटे पे गन रखा जाता है और उनको लिया जाता है। सेम स्टोरी जो हमें परवीन कहती है कि उसी दिन नेक्स्ट डे हम सुबह पुलिस स्टेशन अपने बेटे से मिलने जाते हैं, हम मिल लेते हैं उससे, लेकिन उसके बाद हमें फिर से उनके बेटे का चेहरा नहीं दिखाया जाता है।
जानकारी दे रहे थे श्रीनगर से आमिर पीरजादा। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को नज़रबंद किया गया है। बीबीसी संवाददाता शकील अहमद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज से बात की जो अभी भी नज़रबंद हैं। जानिए उन्होंने क्या कहा।
मुझे ये लगता है ये दिल्ली के हुक्मरानों ने बहुत ही खसारे का ये सौदा किया है। سوال یہ ہے کہ دوسری ریاستیں ہندوستان میں مدغم ہو گئی ہیں لیکن جموں کشمیر اسٹیٹ نے ایکسیشن کیا, مدغم نہیں ہو گئی. وی ڈیڈ ناٹ مرج ود انڈیا, وی ایکسیڈڈ ٹو انڈیا کنڈیشنلی. ہماری کنڈیشنز ہیں اس میں.
اس وقت کیا سوچ ہوگی جو
اس وقت جو انہوں نے کیا ہے, کشمیر کے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر, یہاں کی اسمبلی نہیں تھی ان سے مشورہ کرتے, اور خود ہی دلی میں سوچ کے انہوں نے 370 کو تحلیل کیا, ختم کیا. اور یہ چیز جموں کشمیر کے لوگوں کو, خصوصاً کشمیر کے لوگوں کو یہ ناگوار یہ نہیں گزری, بلکہ وہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری عمر کے لیے جو اب دن گزریں گے اس میں یہ سمجھ لیجئے ایلینیٹ ہو گئے, مرکز سے دور ہو گئے. تو لہذا یہ ایک مستقل ناراضگی مول لی ہے.
یہ بتائیے سو صاحب کہ آپ کی طرح پوری جو سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی ہو, چاہے پی ڈی پی کی ہو, چاہے شاہ فیصل کی ہو, جتنے ایم ایل اے ہیں, جو دوسرے رینک کے جو سیاسی کارکن ہیں, سبھی گرفتار ہیں. تو
سبھی لوگوں کی یہی رائے ہے. یہاں اب مین سٹریم اور جو علیحدگی پسند کہلاتے تھے وہ لکیر بھی سمجھ لیجیے معدوم ہو گئی ہے. پورا کشمیر غم و غصے میں ڈوبا ہوا ہے.
کشمیر کے عوام کا کیا رد عمل ہوگا اس کے جواب میں؟
کشمیر کے عوام کا رد عمل یہی ہے, بہت زبردست ناراضگی ہے اور لوگوں کی ناراضگی جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے, اور لوگوں کو یہ سخت ناگوار گزرا ہے کہ 370 کو مرکز نے یک طرفہ فیصلہ لیا ہے, جس کو کشمیر کے لوگ نہ کل قبول کیا, نہ آج کرتے ہیں, نہ آنے والے کل میں تسلیم کریں گے.
اس کا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟
نتیجہ مرکز سے دوری, نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کو بٹا لگ جائے گا, اور اسی وجہ سے کشمیر میں جو اب جو غصہ ہے وہ انتہا کو پہنچا ہے. اور اس کے لیے یہ جو ہے مرکز کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے یہ بہت ہی خسارے کا سودا کیا ہے.
اچھا سوز صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ اطلاع اس طرح کی بھی گرفتاریوں کی بھی ہے کہ عام لوگوں میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟
عام لوگوں میں بھی گرفتاریاں. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے, ہمارے ٹیلی فون بند ہیں, مشکل سے لینڈ لائن کھلی ہے, اسی لیے تو میں آپ سے بات کرتا ہوں, ہمارا موبائل نہیں چلتا. یہ دور جو ہے ان دنوں کا, یہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اٹس اے ٹوٹلی شٹ. گھروں میں میری طرح سے درجنوں لوگ نظر بند ہیں, جیل میں ہیں, اور شام کو اس گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ ہم کو بتاتا ہے جو باتیں بہت غلط ہوتی ہیں. سب ٹھیک ہے, اور ہم اس زندگی میں دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے.
یہ تھے کانگریس نیتا سیف الدین سوز, جن سے بات کر رہے تھے بی بی سی سنواداتا شکیل اختر. اور اب بات مودی کے فرانس دورے کی. فرانس میں مودی دو دن رکنے والے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی پیرس میں موجود ورشٹھ پترکار رنویر نیئر سے, اور ان سے پوچھا کہ دونوں دیشوں کے لیے کتنا اہم ہے مودی کا دورہ اور مودی کا کارکرم کیا رہے گا.
تو سب سے پہلے تو جیسے وہ آج سندھیا کو پہنچیں گے تو پیرس نہ جا کے, پیرس کے تھوڑا سا باہر ہی شانتی نام کا ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہاں پر ایک بہت فیمس کاسل ہے شاتو دا شانتی, وہاں پر ان کی ملاقات فرانس کے راشٹرپتی ایمانوئل میکرون سے ہوگی. یہ ملاقات قریباً 1.5-2 گھنٹہ چلے گی. پہلے پرائیویٹ ہوگا, صرف دو لیڈرز ہوں گے, اس کے بعد میں ڈیلیگیشن لیول میٹنگ ہوگی, اور اس کے پشچات چھوٹا سا پریس کانفرنس یا پریس بریفنگ ہے. مکھیہ مدے جو فرانس اور انڈیا کے بیچ میں رہیں گے اس دوران, سب سے پہلے تو فرانس یہ چاہے گا کہ جو بھارت نے پہلے رافال کا ایک آرڈر دیا تھا پچھلے سال
جی,
اس کو اور بڑھایا جائے, اور اپیرنٹلی کچھ 36 نئے ایئر کرافٹ بیچنے کی بات کریں گے. اس کے علاوہ فرانس اور بھارت جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں, جس میں کشمیر بھی رہے گا بالکل, اور میرے خیال سے بھارت فرانس کی پرشنسا کرے گا جس طرح سے فرانس نے سپورٹ کیا ہے بھارت کو اس بہت اہم مدے پر. اس کے علاوہ جو بیارچ میں جو باتیں ہوں گی G7 کے دوران اسی سپتاہ کے انت میں, اس پر بھی کچھ وارتالاپ ہونے کی ضرور آشا ہے, خاص کر کے انکوالٹی جو ایک طرح سے بڑھ رہی ہے دنیا میں, بھارت میں بھی اور فرانس میں بھی اور باقی دیشوں میں بھی.
آپ نے مینشن کیا کہ سامرک طور پہ بھی کچھ بات چیت ہونے کے آثار ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کوئی سمجھوتے بھی ہو سکتے ہیں اس بیچ؟
دیکھیے پردھان منتری مودی کے کام کرنے کے سٹائل کو دیکھتے ہوئے بہت مشکل ہے کہہ پانا, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس سمے آج کی میٹنگ کے بعد ہی کچھ سمجھوتا اناؤنس کیا جائے گا. یہ شاید ایک طرح سے ایکسپلوریٹری لیول ٹاک ہوگی کہ بھارت اور کتنے رافال خرید سکتا ہے, کس کنڈیشن میں خریدے گا, کیونکہ پہلے جو کنڈیشن تھی شاید وہ اب پھر سے لاگو نہ ہوں. بھارت چاہے گا کہ کچھ زیادہ فیوریبل ٹرمز اس کے لیے آئیں.
जी, इससे पहले फ्रांस ने कश्मीर के मामले में ये कहा था कि कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है और दोनों को सहमति से सुलझा लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कश्मीर मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचीत हो सकती है आज?
बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से ये मुद्दा काफी प्रोमिनेंट रहेगा इस डिस्कशन में। और जैसा मैंने पहले कहा कि भारत, इंडिया विल एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड, भारत अपना धन्यवाद शायद कहना चाहेगा फ्रांस को, जिस तरह से फ्रांस ने एक सॉलिड सपोर्ट किया है, न केवल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में पिछले सप्ताह, लेकिन उसके बाहर भी। और लगातार फ्रांस ने यही कहा है कि ये फ्रांस जो कश्मीर का इशू है वो पाकिस्तान और भारत को मिलकर सुलझाना चाहिए। और हालांकि कुछ मीडियाज ने, जैसे कि खास करके बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कश्मीर की सिचुएशन पे, लेकिन फ्रांस ने इस पे कोई भी कमेंट नहीं दिया है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नैयर। कार्यक्रम में आगे सुनवाएंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों के परिसीमन पर खास रिपोर्ट, इंसानी शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है माइक्रोप्लास्टिक, और साथ ही सुनवाएंगे आपकी चिट्ठियां भी। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले विश्व समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार दिव्या आर्य से। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आज सीबीआई की अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने पी चिदम्बरम के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जबकि चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत मांगी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पी चिदम्बरम को बड़े नाटकीय तरीके से बुधवार रात कांग्रेस मुख्यालय से गिरफ्तार कर लिया था और दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित मुख्यालय ले गई थी। चिदम्बरम ने उससे कुछ ही देर पहले एक प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि वो भागे नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए कानून की शरण में गए हैं। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों के आंकड़े साल 2013 से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। प्रवासी मामलों के जानकार बताते हैं कि ब्रिटेन अब यूरोपीय यूनियन से आने वालों के लिए पोलैंड और पूर्वी यूरोपीय देशों के मुकाबले कम आकर्षण रखता है। इसकी वजह में ब्रेक्सिट से जुड़ी आर्थिक अनिश्चितताओं के साथ साथ पाउंड का गिरता भाव भी है। सीरिया सरकार का कहना है कि उन्होंने बागियों के कब्जे वाले प्रांत इडलिब से आम नागरिकों के बचकर निकलने का एक रास्ता तैयार किया है। रूस के समर्थन वाले सरकारी सुरक्षा बलों ने दक्षिण इडलिब में बढ़त हासिल की है, जहां अलकायदा से जुड़े गुटों का प्रभुत्व है। विपक्षी नियंत्रण वाले इस इलाके में पिछले महीनों में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं और लाखों को घर छोड़ भागना पड़ा है। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश विफल हो गई है। बांग्लादेश के राहत शिविरों के सामने लगाए गए 10 ट्रकों और 5 बसों में जाने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं आया। म्यांमार और बांग्लादेश ने 3,000 से ज्यादा लोगों को वापस लौटने के लिए चिन्हित किया, लेकिन लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। 2 साल पहले रोहिंग्या बर्मी सेना से बचकर भागे थे। संयुक्त राष्ट्र ने सेना पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच के माँ बाप अपने दोनों बेटों के लिए अदालत से कोई रियायत नहीं ले पाए हैं। उनके बेटों पर अपनी बहन के कत्ल का आरोप है। माँ बाप ने अदालत में कहा था कि उन्होंने अपने बेटों को इसके लिए माफ कर दिया है। कंदील बलोच सामाजिक पाबंदियों के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए चर्चा में आई थी। उनकी हत्या पर हुए कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान में कानून बदला गया और अब पीड़ित के परिवार ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर हत्या के आरोपियों को माफी नहीं दे सकते। अंतरिक्ष यात्रियों का कुछ काम रोबोट से करवाने की कोशिशों में एक बढ़त दर्ज की गई है। रूस ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जो एक इंसानी आकार के रोबोट को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन लेकर जाएगा। फ्योडोर नाम का रोबोट अपना ज्यादा वक्त रॉकेट में ही बिताएगा और तारे जोड़ने और पेच कसने जैसे छोटे मोटे काम करेगा, पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में रोबोट स्पेस वॉक जैसे काम कर पाएंगे। बीबीसी समाचार।
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए के खात्मे के बाद इसे राज्य के दर्जे से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद मोदी सरकार अब विधानसभा सीटों की परिसीमन की तैयारी में जुटी है। इसकी प्रक्रिया की घोषणा भी जल्द की जाएगी, लेकिन परिसीमन के सियासी नतीजे क्या हो सकते हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट।
कश्मीर घाटी की पार्टियों को अगर आर्टिकल 370 के खारिज करने से पहला बड़ा झटका लगा है तो परिसीमन के नतीजे आने के बाद इन पार्टियों को दूसरा बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आमतौर से ये समझा जा रहा है कि परिसीमन के बाद जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ेंगी और इनकी संख्या कश्मीर घाटी की सीटों से अधिक हो जाएंगी। इस तरह जम्मू की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान हो जाएगा। जम्मू स्थित वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा भसीन कहती हैं,
बीजेपी की जो पॉलिसी लगती है वो यहाँ पे कोई भी स्पेस किसी किस्म की ऑपोजिशन को नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि बीजेपी की ही हुकूमत आए, और क्योंकि हिंदू मेजोरिटी एरियाज में अक्सरियत अपनी साबित करने के लिए वो चाहते हैं कि जम्मू रीजन की ज्यादा सीट्स हो बनिस्बत कश्मीर।
2014 में हुए विधानसभा चुनाव में जम्मू क्षेत्र की 37 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 25 पर जीत हासिल की थी। 5 कांग्रेस और कश्मीर घाटी की दो बड़ी पार्टियों यानी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3-3 सीटें प्राप्त हुई थी। उधर कश्मीर घाटी की 46 विधानसभा चुनावी क्षेत्रों में से पीडीपी को 28 सीटें मिली थीं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने 12 पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन की मांग सालों से की जा रही है। खास तौर से जम्मू में इसकी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पुरजोर वकालत की है। इस मांग के पीछे वो शिकायत है जिसमें अक्सर ये कहा जाता है कि राज्य की विधानसभा में जम्मू क्षेत्र का नेतृत्व कश्मीर घाटी की तुलना में कम है, लेकिन ये कहाँ तक सही है? अनुराधा भसीन कहती हैं,
जम्मू में एक बहुत अरसे से एक फीलिंग है डिस्क्रिमिनेशन की, कि डोमिनेशन जो है वो सिर्फ कश्मीर की लीडरशिप की रही, और उनके परसेप्शन में कि कश्मीर के लीडर्स ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं की, वहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट की। अब ये डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी किस हद तक सही है, इसको बिना किसी एम्पिरिकल एविडेंस के स्टडी किए बिना आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते।
जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी कहते हैं कि परिसीमन का काम चुनाव आयोग कर सकता है।
ये परिसीमन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है, तो सरकार चुनाव आयोग से इस काम को करने को कह सकती है और इसे परिसीमन आयोग की तरह ही देखा जाएगा।
एन गोपाल स्वामी ने कहा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने पर भी हदबंदी की प्रक्रिया का काम चुनाव आयोग ने ही किया था। हदबंदी 2011 की जनगणना के अंतर्गत की जाएगी और इस जनगणना के अनुसार जम्मू डिवीजन की आबादी 54 लाख है, यहाँ हिंदू आबादी अधिक है। जम्मू डिवीजन 26,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कश्मीर घाटी की जनसंख्या 69 लाख है, जिसमें भारी अक्सरियत मुसलमानों की है और इसका क्षेत्रफल 15,900 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल में जम्मू बड़ा है और आबादी में घाटी। बीजेपी का तर्क ये है कि चुनावी क्षेत्रों की हदबंदी के समय केवल आबादी को नज़र में रखना सही नहीं होगा। आमतौर से जम्मू की एक सीट का क्षेत्रफल कश्मीर की एक सीट के क्षेत्रफल से कहीं ज़्यादा है। गोपाल स्वामी के अनुसार परिसीमन के दौरान कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जिनमें क्षेत्रफल भी एक खास मुद्दा है। लेकिन जम्मू में सभी नेता बीजेपी की तरह से सोचते हों ऐसा भी सही नहीं है। भीम सिंह जम्मू की पैंथर्स पार्टी के संस्थापक हैं और राज्य में कई सालों तक विधायक भी रह चुके हैं।
जम्मू कश्मीर के इतिहास को तोड़ नहीं सकते हैं, पुनर्गठन कर सकते हैं, तश्कीलें नौ कर सकते हैं। वो हम कहते हैं कश्मीर का स्टेट बनाइए, जम्मू प्रोविंस का स्टेट बनाइए, लेकिन हमें ना कश्मीर को मंजूर होगा ना जम्मू को। आज जितने कश्मीर के बड़े बड़े लीडर हैं सारी जेलों में बंद, अपने घरों में बंद। जम्मू में भी मेरी पार्टी के पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन प्रेसिडेंट सब जेलों में बंद रखे हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अब जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा क्षेत्र होंगे, जिनमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लिए 24 सीटें भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 7 सीटें बढ़ सकती हैं और कई लोगों के अनुसार ये सभी सीटें जम्मू में बढ़ेंगी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी सेवा से आप सुन रहे हैं दिन भर, ये एक घंटे का विशेष कार्यक्रम है। आगे कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां और सोशल मीडिया राउंडअप। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक के इंसानी स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल खतरा नहीं है। हालांकि संगठन ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए मौजूदा शोध पर्याप्त नहीं है। सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक यानी 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के बेहद छोटे कण मौजूद होते हैं, उनसे इंसानी शरीर को अधिक खतरा नहीं है। इस विषय पर यह संगठन की पहली रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि नदी, झीलों, तालाबों और बोतल बंद पानी के जरिए शरीर में पहुंचने वाला प्लास्टिक शरीर में प्रोसेस नहीं होगा या कहीं सोखा नहीं जाएगा और मल के रास्ते सीधे निकल जाएगा। संगठन का कहना है कि मानव मल से होने वाले प्रदूषण के कारण कम से कम 2 अरब लोग प्रभावित होते हैं और इससे निपटना बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि संगठन ने माना है कि मानव शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक के असर से संबंधित जो शोध अब तक हुए हैं वो इसकी गंभीरता को बताने के लिए नाकाफी हैं, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जेनिफर डी फ्रांस रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल थी। वो कहती हैं संगठन पानी के स्रोतों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी और इंसान के शरीर पर इसके असर पर शोध कर रहा है।
We know microplastics are throughout the environment, in our drinking water, in our air, in food.
ये रिपोर्ट पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पर है। अब जरूरी है कि हम पर्यावरण को बचाए रखने के बारे में सोचें। इसी के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन इस मामले में विस्तृत शोध करने वाला है ताकि माइक्रोप्लास्टिक का इंसान और पर्यावरण पर असर पता चल सके।
वही विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले ब्रूस गॉर्डन कहते हैं,
We know now, from our WHO data and UNICEF data that 2 billion people drink water currently that is fecally contaminated.
विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के जारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि कम से कम 2 अरब लोग मल के कारण प्रदूषित पानी पीते हैं और हर साल करीब 10 लाख लोग इस कारण जान गंवा देते हैं। दुनिया की सभी सरकारों का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारें इसकी निगरानी का काम करें, लेकिन इस बारे में शोध की जरूरत है।
ब्रूस गॉर्डन के शब्द। इस हालिया शोध को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये बहुत सीमित जानकारी पर आधारित है, इसलिए इस मुद्दे पर और रिसर्च किए जाने की जरूरत है।
रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी। क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट के मायने और जब प्लास्टिक के कारण कई जानवरों की मौत होने की खबरें आम बात हैं तो क्या इंसानी शरीर को इससे कुछ हानि नहीं होती? अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की प्रोग्राम मैनेजर स्वाति सिंह सांप्याल से, जिन्होंने प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर शोध किया है।
मुझे नहीं लगता है कि एक रिसर्च पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे लिए हानिकारक नहीं है। मुझे लगता है इस विषय पे और रिसर्च होना बहुत जरूरी है। ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने भी अपने रिब्यूटल में कहा है कि हमें और इस विषय पे चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ है जो इससे इम्पैक्टेड हो रहा है, फिशेज है। तो बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक मीन्स 0.5 मिलीमीटर से भी कम साइज, तो हम फिलहाल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं कि ये हानिकारक है या नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हानिकारक नहीं है, क्योंकि इस विषय पे और रिसर्च की जरूरत है। मे बी हमें सैंपल स्टडीज करने पड़ेंगे रीजनली, कोस्टल एरियाज में, लैंड बेस्ड एरियाज में, और तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो प्रॉब्ली एक रिपोर्ट का ये कहना कि हानिकारक नहीं है इज नॉट इनफ।
इसी रिपोर्ट में WHO ने यह भी कहा है कि दुनिया में सालाना 2 अरब के आसपास लोग पानी के प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं और उनमें से करीब 10 लाख की मौत भी होती है इसी वजह से।
अगर आप अमूमन वेस्ट की बात करें, वो अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग वर्ल्ड को आउटसोर्स करता है, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो, तो सबसे ज्यादा कंटामिनेशन वाटर का होता है। और अगर आपका वाटर कंटामिनेट हुआ तो इमेजिन कितना पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है। तो आई थिंक ये रिपोर्ट का कहना बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम आज के डेट में जो डेथ्स हो रही हैं या तो वो एयर पोल्यूशन से हो रही हैं और सबसे पहले वाटर पोल्यूशन से, क्योंकि आप नहाते हैं, पीते हैं, खाना आप अपना उसमें बनाते हैं, और अगर वो प्रदूषित है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा।
स्वाति जी, ये बताएं कि कछुओं का, मछलियों का, गायों का या चिड़िया का प्लास्टिक खाना, बीमार पड़ना, मरना, इस तरह की खबरें तो हम देखते ही रहते हैं। क्या इंसानी शरीर को वाकई प्लास्टिक से कोई हानि हो सकती है?
जैसा कि इस रिपोर्ट ने भी कहा है कि जनरली ये जितना भी माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ये अगर आप लें, आपका थ्रोट, बेली, आपका इंटेस्टाइन, ये वहां से पास कर जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बोला गया है कि, और इसी वजह से हानिकारक नहीं है। पर मैं वही कह रही हूँ कि अभी तक ऐसे कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्टडीज वास्ट स्केल पे नहीं हुए हैं। तो अगर आप एक्वेटिक लाइफ देखें, गाय या नॉर्मल मैमल्स देखें, अगर ये प्लास्टिक इंजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज लिमिटेड टू पैकेजिंग वाला प्लास्टिक, कैरी बैग्स, स्ट्रॉज जो व्हेल्स वगैरह इंजेस्ट कर लेते हैं, तो ऑफकोर्स वो तो बहुत हानिकारक है, आपका पूरा एलिमेंट्री कनाल या रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ब्लॉक करता है। बट माइक्रो प्लास्टिक कहीं ना कहीं आज के डेट पे हमारे फीक्स में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, नमक में प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, पानी की वाटर बॉटल्स में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है, पर किसी भी स्टडी ने ये डायरेक्टली एस्टेब्लिश नहीं किया है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, किस लेवल तक हानिकारक है, और अगर बायो एक्युमुलेशन भी हो तो कितने साल बाद आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा।
इंसानी शरीर पर माइक्रोप्लास्टिक के असर पर पर्याप्त शोध की जरूरत बता रही थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्वाति सिंह सांब्याल।
घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है।
The Eid namaz were offered at different mosques. After the prayer, the congregation dispersed peacefully.
अंदर से लोगों के अंदर मतलब भरा हुआ है, जो ही लोगों को मौका मिलेगा ये उबल पड़ेगा।
फोन कॉल्स बंद है, इंटरनेट बंद है,
इंटरनेट बंद हो या कर्फ्यू लगा हो,
बीबीसी हिंदी रेडियो हमेशा आपके साथ है।
दिन भर कार्यक्रम का प्रसारण पूरे एक घंटे तक होगा।
भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हफ्ते के सातों दिन
25 और 31 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795 और 11995 किलोहर्ट्ज़ पर
बीबीसी हिंदी रेडियो।
बीबीसी हिंदी सेवा के इस एक घंटे के खास कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। हमें लिखिए hindi.letters@bbc.co.uk पर। और अब आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं कि सोशल मीडिया पर आज किन किन बातों पर चर्चा हुई। ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे से।
आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा रही वो कांग्रेस नेता शशि थरूर की रही, और उनकी इंग्लिश के चर्चे आपको पता है कि होते रहते हैं, और
आज फिर उन्होंने कोई कठिन शब्द दे दिया।
जी हाँ, वो ऐसा ही एक शब्द उन्होंने दिया है, और आज उन्होंने ट्वीट में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो शब्द है शादन फ्रेडा, और इस वर्ड की चर्चा इतनी हो रही है, और इनफैक्ट जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मेरी भी जबान जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। इसके स्पेलिंग मैं बता देती हूँ श्रोताओं को, SCHADENFREUDE। तो इस शब्द का अर्थ होता है कि दूसरे शख्स के दुख में खुशी महसूस करना, और उन्होंने इस पूरे शब्द का इस्तेमाल किया चिदंबरम को लिए लेकर के किए गए एक ट्वीट में, और उन्होंने लिखा कि यह आपके ज़मीर की ताकत है कि आप अत्याचार और चरित्र हनन के खिलाफ हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़े हैं। मुझे यकीन है कि अंत में न्याय की जीत होगी, तब तक दूसरों के दुख में खुश होने वाले द्वेषपूर्ण दिमागों को आनंद लेते देना चाहिए।
जी, इसके सिवा और सोशल मीडिया पर क्या हल चल रही है?
हाँ, इसके अलावा 24 घंटे में जिन तीन तस्वीरों की सबसे ज़्यादा चर्चा रही, मैं उसकी बात करना चाहूँगी कि सबसे पहली तस्वीर दिल्ली में जो रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद विशाल प्रदर्शन हुआ है, उसकी एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है, और बुधवार को इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए थे, और रविदासियों के जो झंडे, नीले झंडे की जो तस्वीरें हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं। और दूसरी तस्वीर है अमेजन के जंगलों में जो आग लगी है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, और ये दुनिया का ऐसा जंगल है जहाँ सबसे ज़्यादा हम सभी को ऑक्सीजन मिलती है, और यहाँ जो जंगल है इनमें आग लगी हुई है, और जो नज़ारे सामने आ रहे हैं वो सिर्फ आग और धुओं के हैं।
जी, हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि अमेजन के जंगलों की हाल में अंधाधुंध कटाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है।
जी बिल्कुल बिल्कुल मानसी। और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे घूम रही है, वो है न्यूजीलैंड के स्पीकर की जिनका नाम है ट्रेवर मलार्ड। एक्चुअली वो एक तस्वीर है जिसमें वो सदन की सुनवाई के दौरान एक बच्चे को दूध पिलाते हुए उसकी बेबी सिटिंग करते हुए, मतलब उसको अपने गोद में थामे नज़र आ रहे हैं, और ये बच्चा उनका नहीं है, उनके साथ ही जो सांसद हैं जिनका नाम है टमाती कोफी उनका है, और एक्चुअली वो एक पेरेंटल लीव पर गए थे, और उसके बाद वो सदन में आए, और जब बहस होने लगी तो उन्होंने उस सांसद से बोला कि ये बच्चा हमें दे दीजिए, और स्पीकर ने खुद इस तस्वीर को शेयर कर रहा है, बेहद प्यारी तस्वीर है।
सोशल राउंडअप सुना रही थी कीर्ति दुबे। अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय,
आपकी राय के साथ आज मैं हूँ पंकज प्रियदर्शी और मेरा साथ दे रही हैं
सुशीला सिंह। और पंकज जी, मैं पहली चिट्ठी ले रही हूँ हरिबिलास सिंह तोमर की। ये ग्राम तरसेमा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि प्रातकालीन सभा में संदीप सोनी द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां सुना बहुत ही अच्छा लगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संघर्ष की कहानी अच्छे ढंग से व्यक्त की गई। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप, पुतिन व मोदी जी की समकक्षता का सवाल है तो तुलना किसी से किसी की नहीं की जा सकती, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और ये संदीप जी को आखिर में फिर से बधाई दे रहे हैं अच्छा दुनिया जहां प्रस्तुत करने के लिए।
तो हरिविलास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पत्र के लिए। दुनिया जहां हम बुधवार को शाम की सभा में भी पेश करते हैं। जहां तक बिन्यामिन नेतन्याहू की बात है, वहां इसराइल में अभी राजनीतिक संकट चल रहा है, लेकिन ये तो आपने सही बात लिखी कि बिन्यामिन नेतन्याहू पर ही पूरा ध्यान है। तो संदीप सोनी अपने कार्यक्रम में, अपनी रिपोर्ट में, वो वहाँ के पूरे संकट को और बिन्यामिन नेतन्याहू के बारे में जानकारी देने में सफल रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी, अगला ईमेल है मेरे पास और ये लिखा है विकास शर्मा ने कुरुक्षेत्र से। ये लिखते हैं कि कश्मीर पर आपकी रिपोर्ट लगातार सुन रहे हैं, घाटी के हालात पर लगातार रिपोर्ट आ रही है, पर 5 अगस्त के बाद से शायद अब तक हम उन आवाज़ों को नहीं सुन पाए जो बकरवाल हैं, गुजर हैं, उनका पक्ष शायद रहता है। वाल्मीकि समुदाय से भी शायद एक भी बातचीत नहीं हो पाई है। अब तो समय भी पर्याप्त है, तो कृपया इस मुद्दे को और भी तरह से छूने का प्रयास हो।
बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। और जहाँ तक बात आपने जिक्र किया है बकरवाल, गुजर और अन्य समुदायों की, तो आपका जो आपकी राय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपकी सलाह काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा आपको पता है इस समय कश्मीर में काफ़ी पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों के बीच एक आज़ाद मीडिया को रिपोर्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द ही इनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे।
और विकास शर्मा जो है, एक शिकायत भी है उन्हें हमसे। ये कहते हैं कि आज फैसल साहब की श्री रविदास मंदिर पर रिपोर्ट सुनी, यानी कल की चर्चा कर रहे हैं। आस्था के नाम पर नई तरह की रूढ़ता यहाँ भी दिखती है। देश की सर्वोच्च संस्था ने बहुत कुछ सोचकर फैसला किया होगा, फिर स्वर्ण मानसिकता भर के पीछे कारण बता देना तो काफ़ी नहीं। इस रिपोर्ट को और गहराई से छुआ जा सकता था, यहाँ से उठने वाले संकेतों पर और विस्तृत बात हो सकती थी। और हाँ, इस पूरी रिपोर्ट में एक पक्ष तो दिखता है, पर दूसरे पक्ष या पहलू पर बात जैसे रहने ही दी गई। बहुत अदब के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके यहाँ के कई लोग खास मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत बार रिपोर्ट शुरू होने से पहले उनके निष्कर्ष को ही समझा जा सकता है, इससे आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
देखिए, आपने विस्तार से लिखा है पत्र और खासकर जो उदाहरण दिया है वो फैसल मोहम्मद अली की कल की रिपोर्ट की। तो देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है, लेकिन ये आज़ाद मुल्क है, लोकतंत्र है और सबको फैसले पर भी अपनी राय रखने का अधिकार है, तो उस पर तो हम कोई ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते। जहाँ तक रिपोर्ट की गुणवत्ता पर आपने सवाल उठाए हैं, तो देखिए कल प्रदर्शन हो रहा था, तो ज़्यादा फोकस इस पर था कि वो प्रदर्शन किस तरह रहा, किस दिशा में गया, कहीं हिंसात्मक तो नहीं हो गया, उसके जो स्टेक होल्डर्स थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन वो किस बात पर इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आपने खुद लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मंदिर को हटाने का आदेश दिया था, तो वो पूरी रिपोर्ट उस बात फोकस थी। जहां तक इसके अन्य पहलुओं की बात है, तो आप निराश मत होइए, आपको जल्द ही रविदास मंदिर तोड़े जाने के बाद जो इतना बवाल हो रहा है उस पर आपको विस्तार से और उसके हर पहलू को जानकारी देने वाली रिपोर्ट जल्द ही आपको सुनने को मिलेगी।
जी, अगली चिट्ठी है मदनलाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से। ये लिखते हैं कि वात्सल्य राय और कुलदीप मिश्र की जम्मू कश्मीर पर विस्तृत रिपोर्ट, प्रियंका दुबे की असम से NRC पर जुटाई गई जानकारी बहुत अच्छी लगी। अपने प्रसारण में आप कश्मीर को भारत शासित कश्मीर हैं, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर व चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को पाकिस्तान शासित कश्मीर और चीन शासित अक्साई चीन नहीं बोलते। आपकी नीति अलग अलग क्यों है?
देखिए, BBC इस पर सुशीला बहुत बार स्पष्टीकरण दे चुका है और कश्मीर पर जिस तरह की बात होती है उसमें BBC का एक पक्ष है और उस पक्ष पर BBC ने कई बार अपना स्टैंड क्लियर किया, वो मुझे फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आरोप गलत है कि हम पाकिस्तान शासित कश्मीर या वो कहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं भारत प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, इसके अलावा हम और कोई भी लाइन नहीं लेते हैं। लेकिन आप संक्षेप में ये जाने कि हमने बहुत सोच समझ के और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के हिसाब से और BBC की जो नीति है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होने के नाते, उस हिसाब से ये तय हुई है ये नीति और ये बिल्कुल स्पष्ट है।
एक आखिरी ईमेल लेना चाहेंगे। ये दाबिस्ता नाज है रायपुर सीतामढ़ी बिहार से। ये लिखती हैं कि 19 अगस्त को खयाम साहब से की गई बातचीत की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से दिव्या आर्या ने उनका नाम लिया, शायद उन्होंने उच्चारण सही नहीं किया था, उस पर ये बोल रही हैं कि ये बहुत ही अशोभनीय गलती है।
देखिए, जहाँ तक खयाम साहब का नाम लेने की बात है सुशीला, तो मैंने वो सुना नहीं था, लेकिन अगर हमारी श्रोता कह रही हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इस गलती को हम स्वीकार करते हैं और आगे से ऐसी गलती न हो इसका वादा भी करते हैं। तो सुशीला, चलते चलते श्रोताओं को एक बार फिर पता बताते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110001। और अगर ईमेल से पत्र लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले खेल समाचार सुन लेते हैं रेखा से।
जी, सबसे पहले खेल समाचारों में बात करते हैं हॉकी की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउंड रॉबिन चरण में मिली हार का बदला चुकता करते हुए न्यूजीलैंड को फाइनल में 5-0 से हराकर ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 7वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि शमशेर सिंह ने 18वें मिनट में, नीलाकांता शर्मा ने 22वें मिनट में और गुरसाहिबजीत सिंह ने 26वें और मनदीप सिंह ने 27वें मिनट में बाकी गोल दागे। भारत को राउंड रॉबिन चरण में न्यूजीलैंड ने 1-2 से हराया था। दोनों टीमों ने संभल कर खेलना शुरू किया। भारत को 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर गोल नहीं हो सका। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत ने उसी मिनट में मिले दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने गेंद पर नियंत्रण जारी रखा और पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़त कायम रखी। शमशेर ने 18वें मिनट में भारत के लिए दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे क्वार्टर में 2 बार सर्कल में घूमने में कामयाब रही, जबकि भारत ने 3 और गोल दाग दिए। नीलाकांता ने 22वें मिनट में तीसरा गोल किया। इसके बाद गुरसाहिब सिंह ने मनदीप ने लगातार गोल दागे। इसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका। आखिरी क्वार्टर में भारतीय डिफेंडरों ने दमदार प्रदर्शन करके न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं दिया। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने हाल ही में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 टीम है और शीर्ष पायदान पर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहेगी। वनडे एवं T20 सीरीज में करारी हार झेलने के बाद मेजबान टीम का मनोबल कम है। कप्तान विराट कोहली शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वनडे सीरीज में उन्होंने लगातार 2 शतक लगाए हैं। वो टेस्ट मैच में अगर एक और शतक जड़ते हैं तो एक कप्तान के रूप में शतक लगाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी कर लेंगे। कोहली ने भारतीय कप्तान के रूप में कुल 18 टेस्ट शतक जड़े हैं, जबकि पोंटिंग के नाम 19 शतक हैं। और मुझे लगता है कि खेल जगत में अगर हम एक नजर डालें फुटबॉल की तरफ, तो फुटबॉल में भी काफी अच्छा इंग्लिश प्रीमियर लीग चल रहा है और इस वक्त चेल्सी की जो हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ खास नहीं दिख रही है, लेकिन काफ़ी टीमें हैं जो उभर कर सामने आई हैं और उम्मीद है कि इनसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा।
और अब एक खबर मैं आपको बता दूं जो bbchindi.com पन्ने पर है, और ये खबर आपको, आप इस खबर में पढ़ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 1 साल के प्रतिबंध के बाद टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वापसी की थी स्टीव स्मिथ ने, और उन्होंने दोनों पारियों में बनाए हैं शतक, और उसके बाद नाथन लियन की गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड को पहले टेस्ट में मात भी दी थी। ये जो मैच था ये बारिश के कारण केवल 2 मैचों का हुआ था। और अब चलते चलते सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिव्या आर्य से।
बीबीसी समाचार दिव्या आर्य से। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आज सीबीआई की अदालत ने 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। भारत प्रशासित कश्मीर में बीबीसी की एक टीम 2 कश्मीरी औरतों से मिली है जिनका दावा है कि उनके बेटे और पति को राज्य से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारियों के कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं जारी किए हैं। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन आने वाले प्रवासियों के आंकड़े साल 2013 से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इसकी वजह ब्रेक्सिट को लेकर आर्थिक अनिश्चितताओं के अलावा पाउंड का गिरता भाव बताया जा रहा है। म्यांमार से भागकर बांग्लादेश में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने की कोशिश विफल हो गई है। शरणार्थियों का कहना है कि उनमें अभी भी डर है।
पाकिस्तानी सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच के माँ बाप अपने दोनों बेटों के लिए अदालत से कोई रियायत नहीं ले पाए हैं। उनके बेटों पर अपनी बहन के कत्ल का आरोप है। पाकिस्तान में कंदील के कत्ल के बाद कानून बदला गया और ऑनर किलिंग यानी इज्जत के नाम पर हत्या के मामलों में आरोपी को माफी देने की पीड़ित के परिवार का अधिकार छीन लिया गया। सीरिया सरकार का कहना है कि उन्होंने बागियों के कब्जे वाले प्रांत इदलीब से आम नागरिकों के बचकर निकलने का एक रास्ता तैयार किया है। बीबीसी समाचार।
ये था बीबीसी हिंदी सेवा का खास कार्यक्रम जो एक घंटे का है, कार्यक्रम दिनभर। दिनभर का आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।